आठ सिद्धियां कारिका उह शब्दो ध्यानम दुख विघाताश्रयः सुहृत प्राप्तिः दानम च सिद्धियोष्टौ सिद्धे पुरोंकुश स्त्रीविधः अन्वय उह शब्दः अध्ययनम दुख विघाताः त्रयः सुहृत प्राप्तिः दानम च अष्टौ सिद्धयः सन्ति पूर्व त्रिविधः विपर्याशक्ति तुष्टि रूप बुद्धिवदः सिद्धे अंकुशः अस्ति कारिकार्थ तर्क जनित आत्मज्ञान उह सिद्धि पद जनित आत्मज्ञान शब्द सिद्धि शास्त्रानुसंधान पुरस्पर होने वाली आत्मविषयक अध्ययन सिद्धि दुख नाश से उत्पन्न होने वाली तीन सिद्धियां आत्मज्ञान का उपदेश देने में समर्थ मित्र का साहचर्य सुहृत प्राप्ति संज्ञक सिद्धि तथा दान सिद्धि इस प्रकार आठ सिद्धियां होती हैं बुद्धिवध के प्रथम तीन भेद विपर्यय अशक्ति तथा तुष्टि चतुर्थ वध सिद्धि के लिए अंकुश स्वरूप हैं भाष्य सिद्धि रुच्यते उहो यथा कश्चिन नित्य समूहते किमीह सत्यम किम परम किम नैश्रेयसम किम कृत्वा कृतार्थ स्याम इति चिंतयतो ज्ञानमुत्पद्यते प्रधानादन्य एव पुरुष इतो अन्या बुद्धिर अहंकारो अन्यानि तन्मात्राणिन्द्रियाणि पंच महाभूतानित्येवं तत्वज्ञानमुत्पद्यते एन मोक्षो भवति एषा उहाख्या प्रथमा सिद्धि तथा शब्द ज्ञानात् प्रधान पुरुष बुद्धि अहंकार तन्मात्रेन्द्रिय पंच महाभूत विषयं ज्ञानं भवति तथा मोक्ष इत्येषां शब्दाख्या सिद्धि अध्ययनाद वेदादि शास्त्रा ज्ञानं भवति अध्ययनात् पंचविशति तत्व ज्ञानं प्राप्य तेन मोक्षं याति तेषां तृतीया सिद्ध दुख विधात तत्रयम् आध्यात्मिक आधिभौतिक आधिदैविक दुख त्रय विघाताय गुरुम समुपगम्य तत उपदेशान मोक्षम याति एषा चतुर्थी सिद्धि एवैष दुख त्रय भेदास्त्रिधा कल्प नायति षष्ठ सिद्धिय तथा हृत प्राप्ति यथा कश्चित सुहृत् ज्ञानम अधिगम्य मोक्षम गच्छति एषा सप्तमी सिद्धि दानम यथा कश्चित भव गवताम प्रत्याश्रयोषधि त्रिदंड दंडिकादीनाम ग्रासाच्छादनादीनाम च दाने नोपकृत्य तेभ्यो ज्ञानम वाप्य मोक्षम याति एषाष्टमी सिद्धि असामष्टानाम सिद्धीनाम शास्त्रांतरे संज्ञा कृता तारम सुतारम तारतारम प्रमोदम प्रमुदितम प्रमोदमानम रम्यकम सदा प्रमुदितम इति आसाम विपर्याद बुद्धिर्वधा ये विपरीतास्ते अशक्तौ निक्षिप्ता यथा अतारम सुतार तारमित्यादि द्रष्टव्यम अशक्ति भेदा अष्टविंशति रुत्तास्ते स बुद्धि वधैरेकादशे इंद्रियवधा इति तत्र तुष्टि विपर्या नव सिद्धानां विपर्यया अष्टौ एवमेते सप्तदश बुद्धिवधा एतैः सहेन्द्रियवधा अष्टविंशतिरशक्तिर्भेदा पश्चात् कथिता इति विपर्या शक्तितुष्टि सिद्धि नामे वोद्देशो निर्देशश्च कृत इति किञ्चान्यत् सिद्धे पूर्वोऽङ्कुश त्रिविध सिद्धे पूर्वाया विपर्या शक्तितुष्टस्तथा एव सिद्धिर् अङ्कुश स्तद भेदाभेद त्रिविध यथा हस्ति गृहाताङ्कुशेन वशो भवति एवं विपर्या शक्ति तुष्टिभिर्गृहतो लोको अज्ञानमाप्नोति तस्मादेता परित्यज्य सिद्धि सेव्या सिद्धिस्तत्व ज्ञानमुत्पद्यते तस्मान् मोक्ष इति गौणपाद भाष्य का भावार्थ बुद्धि के तीन वधों का वर्णन करने के पश्चात क्रम प्राप्त चतुर्वध सिद्धि पर व्याख्यान प्रस्तुत हो रहा है ऊह सिद्धि ऊह पद का अर्थ है तर्क जिज्ञासा की भित्ति पर तर्क का उदय होता है इस जिज्ञासा मिश्रित तर्क ने ही दर्शन शास्त्र को जन्म दिया इस संसार में क्या सत्य है क्या असत्य है मोक्ष क्या है किसे करके कृत्य हो सकता हूँ इस प्रकार का सतत ध्यान करते रहने से ऋषि महर्षियों को अंततो गत्वा प्रधान बुद्धि अहंकार तन मात्राएं इंद्रियां तथा पंच महाभूत से भिन्न पुरुष के पृथक स्वरूप का स्फुरण हुआ तथा सांख्य तत्वों के अपरोक्षात्मक ज्ञान में उन्हें मोक्ष की साधनता दिखाई पड़ी। इस प्रकार आत्म विषय ज्ञान के प्रति जो नैसर्गिक विचार सामर्थ्य है उसे ऊह संज्ञक सिद्धि कहते हैं। शब्द सिद्धि, शब्द सिद्धि का तात्पर्य शब्दार्थ सिद्धि से है, अर्थात पद ज्ञान से उत्पन्न अर्थावबोध रूप सामर्थ्य विशेष को शब्द सिद्धि कहते हैं। सांख्य शास्त्र का पाठ करते हुए व्यक्ति द्वारा सांख्य को शब्दावली को सुनते ही जिसे सांख्य के पद पदार्थ स्फुरित होने लगते हैं और जड़ पदार्थों से अपने को भिन्न जानकर जो मोक्षोपयोगी सांख्य मार्ग का अनुसरण करता है उसे शब्द सिद्धि प्राप्त हुई है ऐसा माना जाता है। इस प्रकार शब्द से उत्पन्न होने वाले आत्मज्ञान को शब्द सिद्धि कहते हैं। अध्ययन सिद्धि, गुरुमुख से वेदादि शास्त्रों के अध्ययन द्वारा उत्पन्न सामर्थ्य विशेष से सांख्य सम्मत 25 तत्वों के ज्ञान पूर्वक जो मोक्ष प्राप्त होता है वह तीसरी अध्ययन सिद्धि है। इस प्रकार अध्ययन से होने वाला आत्मज्ञान अध्ययन सिद्धि के अंतर्गत है। त्रिविध दुखों के नाश से तीन प्रकार की सिद्धियां। पहली कारिका में दुखवाद पर विस्तार पूर्वक विचार किया गया है। दुख से व्यक्ति की इंद्रिय शक्ति क्षीण हो जाया करती है। इसके विपरीत सुखी व्यक्ति के बुद्धियादि करणों में ऐसी सजीवता छाई रहती है कि वह मोक्षोपयोगी द्रुह मार्ग पर चलने के लिए अपने को समर्थ पाता है। अतः आध्यात्मिक आधिदैविक तथा आधिभौतिक दुखों के नाश के लिए गुरु के श्री चरणों में बैठकर जो गुरुपदेश द्वारा मोक्ष प्राप्ति के विपुल सामर्थ्य से युक्त होता है उसे चतुर्थ दुख विघात सिद्धि प्राप्त होती है। दुख भावत्व की दृष्टि से सिद्धि का एकत्व तथा दुख की त्रिविधता की दृष्टि से सिद्धि का त्रित्व समझना चाहिए, अर्थात तीन प्रकार के दुखों का नाश होने से तीन प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। सुहृत प्राप्ति, मोक्षोपयोगी ज्ञान का उपदेश देने में समर्थ ज्ञानी मित्र की प्राप्ति होना अत्यंत दुर्लभ है। जिसे सहज सुलभ हो जाए उसे सुहृत सिद्धि से संपन्न माना जाता है। इस सिद्धि के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए आचार्य वाचस्पति मिश्र लिखते हैं कि साधक युक्तियों के द्वारा स्वयं परीक्षा किए गए सिद्धांत पर तब तक विश्वास नहीं करता जब तक अपने सहाध्यायियों के साथ उस परीक्षित अर्थ पर विचार विमर्श द्वारा मिलान नहीं कर लेता। इस प्रकार सुहृदों द्वारा स्वनिर्णित सिद्धांत पर समर्थन प्राप्त होना सुहृत प्राप्ति है। दान सिद्धि, रितंभरा प्रज्ञा के धनी सन्यासियों को आश्रय औषधि दंड कमंडलू आदि से तृप्त करके उसके प्रतिदान में जो मोक्षदायक ज्ञान की प्राप्ति होती है उसे दान सिद्धि कहते हैं। ऊपरी वर्णित आठ सिद्धियां योग शास्त्र में क्रमशः तार सुतार तार तार प्रमोद प्रमुदित प्रमोदमान रम्यक तथा सदा मुदित नाम से परिभाषित हैं। आचार्य वाचस्पति मिश्र ने सिद्धियों में कार्य कारण संबंध की भी स्थापना की है। सिद्धियों के बाधक तत्व, ऊपर के वर्णन से स्पष्ट है कि सिद्धियां ज्ञान प्रधान है। ज्ञान का विरोधी अज्ञान होता है, अतः अज्ञान प्रधान विपर्य अशक्ति तथा तुष्टि ज्ञान प्रधान सिद्धि के लिए बाधा स्वरूप है। जिस प्रकार अंकुश के द्वारा हाथी वश में किया जाता है उसी प्रकार विपर्य अशक्ति एवं तुष्टि से गृहित लोक अज्ञानावृत्त होता है। अतः अनुपादेय विपर्य आदि के परित्याग एवं सिद्धि के ग्रहण के लिए मुमुक्षुओं को प्रयत्नशील रहना चाहिए। सिद्धि तत्व ज्ञान का और तत्व ज्ञान मोक्ष का द्वार उद्घाटित करता है। बुद्धि के असिद्धि रूप वध अशक्ति का संकेत। 39वीं कारिका में कथित बुद्धि संबंधी 17 अशक्तियों में 8 शक्तियां सिद्धि की अभाव रूप हैं। उनके नाम अतार असुतार अतारतार अप्रमोद अप्रमुदित अप्रमोदमान अरम्यक तथा असदा प्रमुदित हैं। द्विविध सृष्टि की आवश्यकता कारिका। न बिना भावर लिंगम न बिना लिंगेन भाव निवृत्ति लिंगाख्यो भावाख्यस्तस्माद् द्विविध प्रवर्तते सर्गः। अन्वय, भावः बिना लिंगम न भवति, तथैव लिंगेन बिना भाव निवृत्ति न भवति। तस्माद् भावाख्यो लिंगाख्यो द्विविधः सर्गः प्रवर्तते। कारिकार्थ: जिस प्रकार धर्मादि आठ भावों से युक्त बुद्धि सर्ग के बिना तन मात्राओं से होने वाले लिंग सर्ग भौतिक सर्ग की उत्पत्ति नहीं हो सकती है, उसी प्रकार भोग्य शब्दादि तथा भोगाधिष्ठान शरीर रूप लिंग शरीर के बिना बुद्धि सर्ग की उत्पत्ति संभव नहीं है। इसलिए सांख्य शास्त्र के अनुसार भावाख्य एवं लिंगाख्य दोनों प्रकार का सर्ग प्रवृत्त होता है। भाष्यम: अथ यदुक्तम भावैरधिवासितम लिंगम तत्र भावाधर्मादयो अष्टायुक्ता बुद्धि परिणामा विपर्याय शक्ति तुष्टि सिद्धि परिणीता स भावाख्या प्रत्यय सर्गो लिंगस्य तन्मात्र सर्गस्य चतुर्दश भूत पर्यंत उक्तः तत्रैकेनैव सर्गेण पुरुषार्थ सिद्धौ किमु भयविध सर्गेणेत्येह आह भावै प्रत्यय सर्गैर बिना लिंगम न तन्मात्र सर्गो न पूर्व पूर्व संस्कारा दृष्टाकारित तत्वादुत्तरोत्तरे देह लंभस्य लिंगेन तन्मात्र सर्गेण च बिना भाव निवृत्तिर्न स्थूल सूक्ष्म देह साध्यत्वाद् धर्मादेह अनादित्वांच सर्गस्य बीजांकुर वदन न्योन्याश्रयो न दोषाय तत्जातीयापेक्षित्वे अपि तद्व्यक्तिनां परस्परानपेक्षितत्वात् तस्माद् भावाख्यो लिंगाख्यो लिंगाख्यस्य द्विविध प्रवर्तते सर्ग इति गौणपाद भाष्य का भावार्थ। सांख्य दार्शनिकों ने दो प्रकार का सर्ग स्वीकार किया है, प्रत्यय सर्ग तथा भूत सर्ग। 46वीं से 91वीं कारिका पर्याप्त प्रत्यय सर्ग पर्यंत प्रत्यय सर्ग पर विचार किया गया है। द्वितीय सर्ग के विषय में कुछ कहने से पूर्व आचार्य ईश्वर कृष्ण सांख्य सम्मत उभय सर्गों की उपादेयता तथा एक के बिना दूसरे सर्ग की असंभाव्यता को स्पष्ट कर देना चाहते हैं। इससे एक ही सर्ग से पुरुषार्थ सिद्धि संभव होने से दोनों सर्गों को मानने की क्या आवश्यकता, यह शंका दूर हो सकती है। भावय पद का अर्थ धर्मादि आठ भावों से युक्त बुद्धि तत्व है। बुद्धि तत्व का धर्म अधर्म आदि रूप से जो परिणाम व्यापार होता है उसे ही यहाँ बुद्धि सर्ग अर्थात प्रत्यय सर्ग कहा गया है। तन्मात्र सर्ग से स्थूल शरीर एवं सूक्ष्म शरीर वाली सृष्टि ग्रहित है। बुद्धि सर्ग के बिना तन्मात्र सर्ग प्रवृत्त नहीं हो पाता। उत्तरोत्तर स्थूल एवं सूक्ष्म शरीर की उत्पत्ति पूर्व शरीर के संस्कार रूप अदृष्ट के कारण होती है और संस्कार की उत्पत्ति बुद्धि व्यापार से होती है, अर्थात बुद्धि द्वारा जिस प्रकार का कर्म किया जाता है उसी के अनुसार संस्कार बनता है। इसलिए यदि बुद्धि सर्ग न माना जाए तो उसके कारण होने वाला तन्मात्र सर्ग कैसे हो सकता है। अतः तन्मात्र सर्ग के लिए बुद्धि सर्ग को मानना आवश्यक है। दूसरी तरफ बुद्धि सर्ग की स्थिति के लिए तन्मात्र सर्ग की आवश्यकता है। स्थूल एवं सूक्ष्म शरीर रूप अधिष्ठान में अधिष्ठित होकर ही बुद्धि धर्मादि व्यापार करती है। अतः धर्मादि का साधन होने से स्थूल एवं सूक्ष्म देह अर्थात तन्मात्र सर्ग ग्राह्य है। इस प्रकार बुद्धि सर्ग एवं तन्मात्र सर्ग दोनों को एक दूसरे को की अपेक्षा रहती है। यह अपेक्षा अन्योन्याश्रय दोष से युक्त नहीं है। यह बीजांकुर न्याय की तरह अनादि होने से निर्दुष्ट तथा युक्ति युक्त है। इसलिए लिंगाख्य एवं भावाख्य दोनों प्रकार के सर्ग की प्रवृत्ति मानी गई है।